आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th के साइंस का 10th चैप्टर है और आज की क्लास में इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर थे वो हमें सारे डिस्कस करने हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर में सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर अप कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पावर ऑफ लेंस के बारे में देख लिया था, किस तरीके से फोकल लेंथ हमें कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव लेनी होती है, कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव लेनी होती है। मैग्निफिकेशन के बारे में देखा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो वी बाई यू होता है, जो मिरर्स होते हैं उनमें माइनस वी बाई यू होता है लेकिन लेंसेज में वी बाई यू होता है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला पढ़ा था उसके बारे में भी यहाँ पर बता देते हैं एक बारी। 1/v - 1/u = -1/f, तो 1/v - 1/u = 1/f इस तरीके से फॉर्मूला जो है लेंस फॉर्मूला है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हमने रे डायग्राम्स के बारे में भी देख लिया था जो पेज नंबर 181 पर है और 180 पर है। तो कॉनकेव लेंस के केस में और कॉन्वेक्स लेंस के केस में रे डायग्राम्स का डिस्कशन भी हमने कर लिया था। तो ये सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं, हमें आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 184 पर और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो पेज नंबर 184 पर सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। आपको डेफिनेशन बतानी है वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस की, आपको डेफिनेशन बतानी है। तो आप लोगों को पावर की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, पेज नंबर आप लोग आ जाइए 184 पर ही। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है वन डायोप्टर का डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डी, एंड इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स। तो इसीलिए वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ये है डेफिनेशन। वन डायोप्टर इज बेसिकली द पावर ऑफ अ लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो इस तरीके से आप वन डायोप्टर के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 cm फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आपको बताई गई है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन के लिए आपने सबसे पहले इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की, इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दी गई है मैग्निफिकेशन के बारे में, इसमें आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है उतनी ही बड़ी साइज की बनी है इमेज भी, इसका मतलब 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है। अब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है तो वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रही है, ये भी बताया गया है, और कॉन्वेक्स जो लेंस होती है वो बनाती भी रियल और इन्वर्टेड इमेज है एक केस में छोड़ के सिर्फ। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर की है और साथ में रियल इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। अब -1 जो है ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 = v/u ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो वी बाई यू होता है और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है, क्योंकि बराबर है इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बराबर है, साथ ही में जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी -1 विच इज इक्वल टू वी बाई यू। अब यहाँ पर आप लोगों को जो इमेज डिस्टेंस है वो भी गिवन है और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आपको 50 cm दी गई है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने आपको बोला हुआ है इमेज डिस्टेंस जो होती है उसे आपको पॉजिटिव लेनी होती है अगर आपको वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है और वैल्यू है 50 cm, तो आप लोगों को -1 = v/u जो फॉर्मूला है इसमें v की जगह 50 cm लिख देना है, तो इससे आप लोगों को u की वैल्यू मिल जाएगी और u की क्या वैल्यू मिलेगी, -50 cm मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 cm पर, तो लेंस के राइट साइड में 50 cm पर इमेज की फॉर्मेशन हुई है। तो इससे आपको एक और बात पता चल गई कि अगर ऐसा तो एक ही केस में होता है जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उस अगर उसको लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेंस के रखा है तो राइट साइड में उसकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही और सेम डिस्टेंस पे बन गई है और सेम साइज की बनती है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें जो बताई गई हैं इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पावर की वैल्यू क्या है, तो पावर की वैल्यू पता लगाने के लिए आपको फोकल लेंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपकी जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और अगर आपके लेंस के फोकल लेंथ की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे में जो पावर हो जाएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप लिखेंगे पी इक्वल टू 1/f, और पावर की जगह आपको पता लगाना है कि वैल्यू क्या आ रही है, और फोकल लेंथ की जगह आप लोगों को लिख देना है 0.25 मीटर। ये आपका 25 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे आप लोगों को जो पावर की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 4 डायोप्टर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर का आपके पास फोकल लेंथ है, और ये जो आपके पास क्या लेंस है, आपके पास कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, -2 मीटर हो जाएगी। अब इसकी पावर फाइंड आउट करने के लिए आपको 1/f P=1/f फॉर्मूले में फोकल लेंथ की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी 2 मीटर्स में गिवन है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मीटर में पहले से कन्वर्टेड है, मीटर में ही गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे P=1/f और f की जगह लिखेंगे -2, तो आपकी जो पावर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -0.5 डायोप्टर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है आपको अगर क्वेश्चंस गिवन हो। उसके बाद अब आप लोग आ जाएं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल नहीं यूज किया जा सकता है। तो इसमें से देखो, इसमें से जो ऐसा आपको बताना होगा जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि आपको पता है लेंस बनाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। वाटर ट्रांसपेरेंट हो सकता है अगर साफ हो, ग्लास ट्रांसपेरेंट हो सकता है अगर साफ हो, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट कोई कोई बनते हैं तो वो भी अगर साफ हो तो बन सकते हैं, लेकिन क्ले कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। तो आप लेंस नहीं बना सकते क्ले से, तो आपको क्ले को टिक करना है, क्योंकि क्ले जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको बताया है, आपको एक ही ऐसी पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट को रखने पर कॉनकेव मिरर से एक वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हो। आपको याद होगा सिर्फ एक ही ऐसा केस था जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा था, वो तब था जब हमने ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर उसके पोल पॉइंट के बीच में कहीं पर रखा था। याद है आप लोगों को, जब हमने कॉनकेव मिरर के जो पोल पॉइंट है और उसका फोकस पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में कहीं पर भी रखा था, तो उसकी इमेज जो बनी थी वो बनी थी मिरर के अंदर, वर्चुअल बनी थी, इरेक्ट बनी थी और एनलार्ज्ड बनी थी। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें से 4th ऑप्शन सही है, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, आपको ध्यान से हर एक शब्द पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको बोला कि आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा आपको बोला कि आपको रियल इमेज बनी है, ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरी बात आपको ये बोली है कि जितने बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है उतने बड़ी इमेज बनी है, सेम साइज की इमेज बनी है। तो ऐसा तो एक ही केस में होता है, तब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें। तो जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसी के साइज की इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपको बताए कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें से ऐसा ऑप्शन चुनो जो आपको बोले कि आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बेसिकली रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की दूरी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और आप यही ऑप्शन ढूंढ भी रहे थे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी सेम साइज की बनेगी। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस, दो चीजें आपके पास पड़ी हैं जिनकी दोनों की फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है। अब फोकल लेंथ की वैल्यू -15 जो आप लोगों को माइनस दिख रहा है ना, ये आपको बहुत सी बातें बता देता है। जैसे अगर मिरर्स की बात की जाए तो मिरर्स के केस में आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो होती है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तो मिरर्स के केस में तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है, और लेंसेज के केस में कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, नेगेटिव फोकल लेंथ देते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मिरर है तो मिरर तो ये कॉनकेव मिरर होगा, अगर लेंस है तो लेंस होगा तो ये कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि दोनों की ही जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बोथ आर कॉनकेव, जो मिरर है वो भी कॉनकेव ही होगा अगर उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, और अगर लेंस है तो वो भी कॉनकेव होगा क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। इसमें बोला है कि आप कहीं पर भी खड़े हों और आपकी जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट ही बन रही है। तो देखो अगर मिरर की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई सा भी मिरर हो सकता है, तीन टाइप के मिरर्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा हुआ है, और याद रहे कि आपने प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो प्लेन मिरर तो हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनाती है, वो तो कभी उल्टी बनाती नहीं है, तो प्लेन मिरर तो ये पक्का हो सकता है। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव में से होने के लिए, अगर मान लो कि हमेशा ही किधर भी आप खड़े हो उसकी इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है, वो तो वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनती है। तो यहाँ पर बोला है कि वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट खड़ा हो उसकी इमेज जो है वो कहाँ, वो कैसी बन रही है, वो इरेक्ट बन रही है। तो ऐसा तो या तो प्लेन मिरर हो सकता है ये, या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। तो इस हिसाब से आप डी ऑप्शन जो है उसको करेक्ट कर देंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। अगर आपको डिक्शनरी के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना है तो उसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला कि आपको डिक्शनरी के छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए लेंस यूज करना है। तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि डिक्शनरी के छोटे शब्द बड़े हो जाएं, ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं कि डिक्शनरी के छोटे शब्द और भी छोटे हो जाएं और तब आप उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको पता है कि आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करें तभी एक ऐसा सिचुएशन होता है जब इमेज इरेक्ट बनती है, एनलार्ज्ड भी बनती है और वर्चुअल बनती है। वो तब बनती है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी इन बिटवीन रखते हैं। और अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज करें तो उस केस में तो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटे साइज की इमेज बनती है। तो आप कॉनकेव लेंस तो यूज डेफिनेटली नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप तो इमेज बड़ा करना चाहते हैं, आप बेसिकली मैग्नीफाई करना चाहते हैं, आप साइज को बढ़ा करके देखना चाहते हैं, छोटी ऑब्जेक्ट ली है आपने और उसकी साइज को बढ़ा करके आप देखना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसा कोई लेंस यूज किया जाए जिससे कि इमेज एनलार्ज्ड होकर के हमें मिले। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब दो ऑप्शंस दिए हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पहला ऑप्शन जो है उसमें बोला है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या फिर आप एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आप चाहेंगे कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर ज्यादा हो। पावर जितनी ज्यादा होगी उतना बड़ा इमेज आपको दिखेगा, तो आप पावर ज्यादा चाहते हैं। और आपको पता है कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। अगर पावर बढ़ानी है तो फोकल लेंथ की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो 5 और 50 में से कम वैल्यू कौन सी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कम रहेगी, जितनी कम रहेगी उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी हमारे कॉन्वेक्स लेंस की। तो हम यहाँ पर ऑप्शन जो चूज करेंगे वो है सी ऑप्शन, और यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7th क्वेश्चन में पूछा गया है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ऑप्टिक्स में जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया रहता है, ऑप्टिक्स मतलब कि वो ब्रांच साइंस की, वो ब्रांच जिसमें हम लाइट से जुड़ी हुई सारी बातें करते हैं, तो जब आप लोगों को ऑप्टिक्स में कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो क्वेश्चन को एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, उसमें एक एक शब्द में आपको कोई जानकारी दी हुई रह सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि आपको एक शब्द लिखा हुआ है इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बनानी है आपको। दूसरा आपको शब्द लिखा है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज कब बनती है, सिर्फ तब बनती है जब आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और जो उसका पोल सेंटर पोल है उसके बीच कहीं रखें, तो पोल पॉइंट जो है, पोल पॉइंट और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तभी उसकी इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है, अदरवाइज हर केस में उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो दो बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख के आपको इससे समझ में आ गया कि फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखने से ही इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर से इरेक्ट बनती है। और यही आपका क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा गया है कि रेंज बताइए कि कहाँ से कहाँ तक आप अपने ऑब्जेक्ट को रखें, बिटवीन व्हाट टू व्हाट आपको अपने ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि आपकी इमेज जो बने वो इरेक्ट बने। तो आप लिखेंगे कि पॉइंट, पोल पॉइंट जो है वहां से फोकस पॉइंट तक, यानी कि पोल पॉइंट तो हमारे हमारे मिरर के ऊपर ही लाई करता है, तो वो तो हमारे मिरर पर ही है, तो 0 सेंटीमीटर मान लिया जाएगा, तो 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज इरेक्ट बनेगी, अगर हमने कॉनकेव मिरर यूज किया है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, फोकल लेंथ अगर आपसे बोला जाएगा तो आप 15 सेंटीमीटर माइनस की वैल्यू बोलेंगे कि माइनस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी अगर हम फॉर्मूले में इसे डालते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया कि लार्जर इमेज बनेगी या स्मॉलर, तो आपको पता है कि इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बड़े साइज की बनती है, एनलार्ज हो जाती है तो लार्जर बनेगी। उसके बाद आपको एक और बात बोली गई, आपको रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम तो आपको खुद बनाना है, जो मैंने आप लोगों को बोला भी हुआ है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक रे डायग्राम की, तो रे डायग्राम आप लोग वो वाला बनाए देंगे जिसमें कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन फोकस पॉइंट एंड उसका पोल पॉइंट, और उसकी इमेज जो बन रही है वो बन रही है हमारे कॉनकेव मिरर के पीछे को, और एनलार्ज्ड बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, तो वो वाला जो रे डायग्राम है उसको आप लोग यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आप लोगों को कुछ अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, पूछा है कौन सा मिरर यूज करते हैं। हेडलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स जो है कार के, आपने पढ़ा हुआ है कि हेडलाइट्स ऑफ कार में हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं क्योंकि इससे एक पैरेलल पावरफुल बीम मिलती है, एक इकट्ठा होकर के लाइट आती है, तो इसलिए हम लोग हेडलाइट जो कार के बनाने होते हैं उसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। बी में पूछा है साइड या फिर रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, तो इसमें आपको पता है कि आप लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, उसकी एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होती है, ज्यादा दूरी तक जो जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उनके सबके इमेजेस बना के देता है, डिमिनिश्ड बना के देता है, छोटी इमेजेस साथ में इरेक्ट भी होती है वर्चुअल भी होती है, तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं अगर हमें साइड या फिर रियर व्यू मिरर बनाना है व्हीकल्स का। सी में पूछा है सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस बनाने के लिए आप कौन सा मिरर यूज करते हैं, आप कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कॉनकेव मिरर जो है ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि जो भी पैरेलल लाइट्स पड़ती हैं उनको वो एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो हमें यही तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सूरज की किरणें वो ले और सारा का सारा जो किरणें हैं वो सोलर फर्नेस के ऊपर कन्वर्ज कर दे, उसी के ऊपर सारी की सारी किरणें जो है वो कंसंट्रेट कर दे ताकि हमारा सोलर फर्नेस जो है वो अच्छे से काम करे। सोलर पैनल जो होता है उसी को सोलर फर्नेस कह रहे हैं, यहाँ पर सूरज की किरणों से बिजली पैदा करना ये मेथड यूज करते हैं सोलर पैनल्स में, सोलर फर्नेसेस में, तो यहाँ पर हम सूरज से जो किरणें आ रही है उनको कंसंट्रेट कर देते हैं सोलर पैनल के ऊपर, और इसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है वन हाफ ऑफ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया हुआ है उसका आधा पार्ट आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, पेंट भी कर सकते हैं, तो आधा पार्ट आपने बेसिकली कवर कर दिया, विथ दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की क्या ये एक कंप्लीट इमेज बना करके देगा, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, आपको एक्सपेरिमेंट करना है बेसिकली और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो देखो होता क्या है, आपने जो कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है आप इसे आधा पेंट कर दो, आप इसे आधा कवर कर दो, कुछ भी कर दो, आधा आपने मान लो छिपा दिया और आधे से ही सिर्फ आपने इमेज बनवानी है ऑब्जेक्ट की, तो वो कंप्लीट इमेज तो देगा लेकिन उसकी जो इमेज होगी ना उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि ब्लर सी इमेज आपको देगा ये, तो आप लोगों को जो इमेज मिलेगी वो इतनी बिल्कुल क्लियर नहीं मिलेगी, लेकिन इमेज आपको मिल जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाती है इमेज की अगर हम लेंस का आधा पार्ट कवर कर दें या छिपा दें, तो उससे क्या होता है कि इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसकी इंटेंसिटी कम होने की वजह से इमेज उतनी ब्राइट नहीं दिखती है, उतनी कलरफुल, उतनी जितनी कलरफुल वो रियल में दिख रही है उतनी ज्यादा कलरफुल उसकी इमेज नहीं बनती है। बाकी सारा कुछ प्रोसीजर सेम रहता है, रियल इमेज बना के देता है, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है, बस इसमें दिक्कत ये होती है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला कि क्वेश्चन का हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस क्वेश्चन में हर एक शब्द को पकड़ते हुए सबसे पहला जो आपको पकड़ना है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर की हाइट का है। लेंथ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब है कि उसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और इसको रखा गया है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस आपको पता होगा, मैंने बताया वह कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो पैरेलल रेज जो आती है उनको कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर ला देता है। तो इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस से आपको समझ जाना है, कन्वर्जिंग लेंस लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, अगर डाइवर्जिंग लेंस लिखा है तो आपको समझ जाना है कि कॉनकेव लेंस लिखा है। सिमिलरली इसी तरीके से मिरर्स में भी होता है, अगर कन्वर्जिंग मिरर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि कॉनकेव मिरर के बारे में बात हो रही है, अगर डाइवर्जिंग मिरर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्वर्जिंग लेंस लिखा है तो हमें समझ जाना है कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो पॉजिटिव में हमें फोकल लेंथ लेनी है क्योंकि ये जो लेंस है हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हम प्लस में लेते हैं, तो प्लस 10 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ प्लस सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेनी होती है अगर आप लेंस यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो जब आप लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होता है, स्मॉल यू जो होता है, इसको -25 सेंटीमीटर लेंगे। आपके पास फोकल लेंथ है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, फाइंड आउट हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले में आप डालोगे तो आप सबसे पहले 1/v - 1/-25 cm = 1/10 cm इस तरीके से आपने लिख दिया। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व किया तो हमने लिखा 1/v = 1/10 - 1/25। अब एलसीएम जो है उसे 50 ले सकते हैं, तो 50 एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अगर 1/v आपने लिखा है 1/v = 1/10 - 1/25, तो 10 को 50 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 1/v = 5/50 - 25 का अगर 50 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 1/v = 5/50 - 2/50। तो यहाँ पर आप पूरा सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपका कैसे आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1/v = 3/50। अगर v लिखेंगे तो आप लिखेंगे 50/3 करेंगे तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 16.6 सेंटीमीटर करके आ जाएगी। तो v जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस में होता भी यही है, जो हम लोग अगर फाइंड आउट करें तो अगर पहले से हमें गिवन रहेगा तो हम इमेज डिस्टेंस जो है उसे पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें फाइंड आउट करना था तो हमें पहले से साइन नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था तो हमने उसे नेगेटिव लिया था। तो यहाँ पर इमेज जो है वो 16 सेंटीमीटर पर बन रही है, प्लस हमने इसलिए लिया है क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूसरी साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप क्या करें, आप यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करें और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें। तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना होगा m = v/u। v की वैल्यू तो आ गई 16.6 सेंटीमीटर और u जो है वो है -25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आपकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट आपको पता लगानी है, आप लोगों को ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलरेडी गिवन है तो आपको यहाँ पर पता लगाना है इमेज की हाइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन होता है और मैग्निफिकेशन वी बाय यू के इक्वल भी होता है, तो जो दो चीजें मैग्निफिकेशन के इक्वल है वो आपस में भी इक्वल है, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। हाइट ऑफ इमेज आपको पता लगानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, v और u भी आपको गिवन है, सारा कुछ आपको वैल्यू पुट करना है, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज = 16.6 upon -25 × 5 सेंटीमीटर। एक बार और सुन लो, आप लिखोगे हाइट ऑफ इमेज = 16.6 cm upon -25 cm × 5 सेंटीमीटर। सारा कुछ सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 सेंटीमीटर करके आपकी हाइट ऑफ इमेज आएगी और ये हाइट ऑफ इमेज जो है ये इसकी नेगेटिव वैल्यू इसलिए आ रही है आपके पास क्योंकि ये आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि हाइट जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है। अगर हमारा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी रहती तो वो पॉजिटिव हाइट आती, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, इतना तो आपको पता है। हाइट नेगेटिव आने का सिंपल मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग बनाते हैं लेंसेज के केस में, उसके नीचे को बनी है, तो इसीलिए ये हाइट जो है ये नेगेटिव आ रही है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है अप्रोक्सीमेटली 3.3 सेंटीमीटर है और नेगेटिव आने का सिंपल मतलब यही है कि उसकी इमेज जो बनी है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी है वो नीचे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है, सारा कुछ जो आपने यहाँ पर किया हुआ है उसका रे डायग्राम आप लोगों को बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको खुद से समझना आना चाहिए। तो आपको फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का डबल लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को आपने 25 सेंटीमीटर पे रखा, यानी कि आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट बनती है, ये आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला जो सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो उसकी इमेज बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, इसकी रे डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर बनानी है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम्स। यहाँ पर फिर से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स देख सकते हो आप लोग, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इससे आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली न्यूमेरिकल तो आएगा ही इस चैप्टर में से। उसके साथ में एडिशनल रे डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, आप लोगों को रे डायग्राम भी दे देते हैं। तो आपको रे डायग्राम्स भी अच्छे से आना चाहिए, न्यूमेरिकल भी अच्छे से आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कॉनकेव लेंस के बारे में बोला गया, कॉनकेव लेंस यूज किया, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आप जब लिखेंगे फॉर्मूले में तो आप -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद इसमें बोला है कि इसने इमेज बनाई है, कॉनकेव लेंस ने इमेज बनाई है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, हमारे कॉनकेव लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज की फॉर्मेशन हुई है। जब हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो हम इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को ही नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इमेज की वैल्यू दी गई है तो हम इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो हम लिखेंगे वी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो आपको एफ पता है, एफ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, स्मॉल वी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब क्या करो, फॉर्मूले में डालो सारी वैल्यूज और अपना जो इन लोगों ने पूछा है, इन लोगों ने क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता लगाना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लगाने के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1/v - 1/u = 1/f, 1/v की जगह आप लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, f की जगह आप लिखेंगे -15 और u का आपको पता लगाना है। तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/-10 = 1/-10 - 1/u = 1/-15। उसके बाद आगे फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/u = 1/15 - 1/10। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/u = 1/15 - 1/10। अब यहाँ पर 15 और 10 है तो 15 और 10 का एलसीएम जो आता है वो आता है 30, 30 आपको लाना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/u = 15 का 30 बनाने के लिए आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 1/u = 2/30 माइनस, अब 10 का 30 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा 1/u = 2/30 - 3/30। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/u = -1/30। पूरा सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू जो आ जाएगी वो -30 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इमेज डिस्टेंस तो आपको पहले से गिवन थी 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपकी 30 सेंटीमीटर आ गई, वो भी नेगेटिव वैल्यू आई है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉनकेव लेंस जो आपने यूज किया है, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज भी बनी है। उसके बाद इससे आगे आपको बस इतना बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको रे डायग्राम बना देना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे इमेज बनी है उस हिसाब से, क्योंकि कॉनकेव लेंस का तो दो ही रे डायग्राम्स है, एक तो इन्फिनिटी वाला और दूसरा वाला आप कहीं पर भी इन्फिनिटी और पोल पॉइंट, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पर भी उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, उसी साइड पे बनती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है। इस तरीके से आप लोगों का कॉनकेव लेंस का तो दो ही इमेज का रे डायग्राम वाला वहां पर आपको दिया है रे डायग्राम्स, तो आप बना देंगे आसानी से। आपको प्रैक्टिस करके पहले से जाना है ताकि आप रे डायग्राम्स जो है वो इजीली बना पाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पर इस बार हम लोग मिरर यूज कर रहे हैं, अभी बहुत देर तक हम लोग लेंस यूज कर रहे थे, अब हम लोग मिरर यूज कर रहे हैं। मिरर भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो आपको जब लिखना होगा तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आप यूज कर रहे हैं तो आप फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखने का मतलब है आप लिखेंगे यू, यानी कि स्मॉल यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका है। उसके बाद आपको बोला है कि आपको इमेज डिस्टेंस वगैरह सब फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ इमेज बेसिकली आपको बताने के लिए सारी चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला आपका क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ये फार्मूला आपको यूज करना है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। 4-5 ही फार्मूले हैं इस चैप्टर में, ज्यादा बहुत सारे फार्मूले हैं नहीं, तो आपको वो सारे याद होने चाहिए। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा, आपको बेसिकली इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो 1/v + 1/v + 1/-10 = 1/15। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/v = 1/15 + 1/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वगैरह लेकर के आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा v = 5/30। पूरा मैंने एलसीएम लेने का वो इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पर भी 10 और 15 आ रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 10 और 15 का एलसीएम। आप 30 लेते हैं तो 30 करना है आप लोगों को बेसिकली। तो आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था 1/v = 1/15 + 1/10। तो आपको 30 करना है, 15 को 30 करने के लिए आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 को 30 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/v = 2/30 + 3/30। तो ये करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप लिखेंगे 1/v = 5/30। उसके बाद v की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 30/5 = 6 cm। तो 6 cm की दूरी पर आपकी इमेज रखी है, इमेज डिस्टेंस जो है वो 6 cm है पॉजिटिव वैल्यू के साथ में। उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v/u में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो v की जगह आप लिखेंगे 6 और u की जगह लिखेंगे -10। तो सारा वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद आप लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -6/-10। उसके बाद आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.6 आएगी। 0.6 का मतलब ये है कि आपकी मैग्निफिकेशन जो है ये बता रही है कि आपकी जो इमेज बनी है वो छोटे साइज की बनी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड है। और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि वर्चुअल इमेज बनी है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूसरी साइड में इमेज बनती है, और कॉनकेव मिरर के केस में जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है सेम साइड में इमेज बनती है। तो यहाँ पर तो अगर रे डायग्राम बनाने को आपसे कह दे तो आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पर आप आसानी से, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही इमेजेस बनती है, एक तो इन्फिनिटी वाला होता है और एक दूसरा वाला होता है। तो दूसरा वाला इमेज आपको बनाने के लिए कह देंगे रे डायग्राम। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें बोला है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन। तो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन, अगर प्लेन मिरर की बात की जाए तो उसकी मैग्निफिकेशन +1 होती है, और यहाँ पर बोला है कि इसका क्या मतलब आप समझते हैं। तो इसका बहुत कुछ मतलब आप समझ सकते हैं। प्लस वन का मतलब ये है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है, जो कि हमें पता भी है, सेम साइज की इमेज बनती है जो हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं। साथ में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है प्लेन मिरर के उतनी ही दूरी पर पीछे प्लेन मिरर के पीछे इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी आपको पता चल गया। और प्लस वन है, इसका मतलब ये है कि प्लस वैल्यू से आपको समझ में आता है कि वर्चुअल बनती है इमेज और इरेक्ट बनती है। तो ये सारा कुछ आप समझ सकते हैं, जब आपको प्लस वन बताया गया है तो आप बता सकते हैं कि प्लेन मिरर से किस तरीके से सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मैग्निफिकेशन प्लस वन होने से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 cm। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे आपको बताया गया है कि इसको आपने, इस ऑब्जेक्ट को, 5 सेंटीमीटर की हाइट वाले ऑब्जेक्ट को आपने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपने यूज किया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। अगर कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो आप फोकल लेंथ पता लगा सकते हैं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसमें भी ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ की पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो +15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इस कॉन्वेक्स मिरर की। और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लिखेंगे नेगेटिव, तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -20 सेंटीमीटर है। और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। उसके बाद आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताना है। तो आप मिरर यूज कर रहे हैं तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। इस तरीके से फॉर्मूला आप यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर v तो आपको फाइंड आउट करना है, u आपको गिवन है, f आपको गिवन है, तो आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -20 है, तो आप लिखेंगे 1/v + 1/-20 = 1/15। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v = 1/15 + 1/20। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 है और 20 है डिनोमिनेटर में, नीचे जो है वो 15 है और 20 है। अगर आपको इसका एलसीएम लेना होगा तो आप 60 बना सकते हैं, तो 15 को भी 60 बनाना है, 20 को भी 60 बनाना है। 15 को 60 बनाने के लिए आपको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/60 ऐसे हो जाएगा। और 20 को 60 बनाने के लिए आपको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/60 हो जाएगा। तो उसके बाद आप लिखेंगे 1/v = 4/60 + 3/60। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/v = 7/60। आगे और सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे v = 60/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू v = 8.5, अप्रॉक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर का आपके पास इमेज डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, पॉजिटिव v आने का मतलब ये है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड में इमेज की फॉर्मेशन हुई है। अब मैग्निफिकेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करो। यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है, आपको इमेज की नेचर बतानी है, साइज भी बतानी है। साइज बताने के लिए आप लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज (height of object) - v/u। उसके बाद सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज 5 × -8.5/-20। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको जो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2.14 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है 2.14 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हाइट जो है वो इमेज की, ऑब्जेक्ट की साइज से कम है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया होगा वो प्लस में आएगा। आप लोग जब चेक भी करेंगे -v/u के फॉर्मूले में, आप जब पुट करेंगे -8.5/-20, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा वो 0.4 आएगा, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपकी जो इमेज बनी है वो छोटे साइज की बनी है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लस वैल्यू है, इसका मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, एंड इट इज डिमिनिश्ड इन साइज, छोटे साइज की है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें पूछा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली इमेज बतानी है कि इमेज किस तरीके की है, कितनी बड़ी है, सारा कुछ आपको बताना है। आपको ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, कहाँ पर रखा हुआ है, और मिरर कौन सा यूज किया है, फोकल लेंथ क्या है, ये सारा गिवन है। तो ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर और इसको कॉनकेव मिरर के सामने रखा है 27 सेंटीमीटर पर, 27 सेंटीमीटर पर, जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर नेगेटिव वैल्यू के साथ आपको लेनी है जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर। उसके बाद ये सारी वैल्यूज जो है इसे फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला जो है वो है 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद इसमें आप सारे चीजें डाल देंगे, वैल्यूज डाल देंगे तो आप लिखेंगे 1/v + 1/-27 = 1/18। इस तरीके से आप लिखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 27, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 27 माइनस 1 अपॉन 18। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 18 और 27 आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम आता है वो आता है 54। तो आपको बेसिकली 54 लाना है नीचे। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 अपॉन वी इक्वल टू 27 को आपको 54 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 बाय 27 और 18 को आपको 54 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो आपका पूरा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन 54 माइनस 3 अपॉन 54। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 54, और आपकी v की वैल्यू जो आ जाएगी, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू जो आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस 54 सेंटीमीटर। माइनस 54 सेंटीमीटर से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बनी है। अब आप लोगों को जो ये वैल्यू मिली है इमेज डिस्टेंस की, इसको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, और यहाँ पर माइनस आपको इसका फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आपका कैसे हो जाएगा, आप लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 54 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस 24। तो सारा सॉल्व करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 54 अपॉन 27। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस दुगना है, 27 का दुगना है 54, तो ये कट जाएगा और आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 2। माइनस 2 मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा। इससे आपको समझ में आता है कि जो हमारा इमेज बना है वो साइज तो उसका बड़ा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका साइज डबल है, लेकिन नेगेटिव मैग्निफिकेशन आने का मतलब है कि रियल इमेज बनी है। रियल इमेज बनी है इसका मतलब ये है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज भी बनी है। और इस क्वेश्चन में आपसे एक बात पूछी गई थी कि आपको कहाँ पर स्क्रीन रखना पड़ेगा ताकि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मिले, अच्छे से इमेज मिले। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहे थे। तो आपके पास इमेज डिस्टेंस कितनी है, 54 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो आपको ये लिखना है कि कॉनकेव मिरर के सामने जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में हमें कॉनकेव मिरर के सामने जो स्क्रीन है उसे प्लेस करना पड़ेगा 54 सेंटीमीटर पर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइज ऑफ इमेज भी पूछा है, तो साइज ऑफ इमेज पता लगाने के लिए आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं माइनस 2। तो माइनस 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और मैग्निफिकेशन 2 माइनस 2 है, तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी माइनस 14 सेंटीमीटर। माइनस का हाइट आपको पता है हाइट जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है कभी, लेकिन यहाँ पर फिर भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी इमेज जो बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, सिंपल ये मतलब है। हाइट नेगेटिव कभी नहीं होती है, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, हाइट कभी घटती नहीं है, हाइट बढ़ती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसीलिए आपकी नेगेटिव वैल्यू की हाइट आई है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर माइनस 2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। माइनस 2 की पावर है, इसका मतलब है ये कॉनकेव लेंस है और इसकी पावर की वैल्यू 1/2 है, सॉरी इसकी पावर की वैल्यू माइनस 2 डायोप्टर है। तो आपको बेसिकली जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 1/f, इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/p। तो इससे फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर। तो आपके पास बेसिकली एक ऐसा कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू है माइनस 0.5 मीटर। माइनस होने का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ तो इसकी 0.5 मीटर ही है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें पूछा है अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो पावर देखो, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस यूज किया गया है, कन्वर्जिंग लेंस को प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा। तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस 1.5 डायोप्टर की पावर देख रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब पावर हमें पता है, हमें फोकल लेंथ पता लगाना है, तो फोकल लेंथ पता लगाने के लिए आप पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू 1/p. तो आपका जो पावर से आप फोकल लेंथ पता लगाएंगे तो f इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.66 meter. तो पावर से आपने फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करके आपने फोकल लेंथ की वैल्यू निकाली है 0.66 meter. इससे आपको पता लग रहा है कि आपने कॉन्वेक्स लेंथ यूज किया, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फोकल लेंथ की 0.66 meter, और ये एक कॉन्वर्जिंग लेंस है. तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है. अब आप लोग सारा चैप्टर खुद से रिवाइज कर लेंगे. कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछेंगे. सारे डेफिनेशंस आपको आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैग्निफिकेशन का या फिर लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए. आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछेंगे. आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.